بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز اور امام کے روحانی فرزندان، آپ کی روحیں بڑی خوش نصیب ہیں، آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ اسماعیلی مذہب میں پیدا ہوئے، اور حالانکہ اس کے لیے کوئی مومن یہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی تھی، کوئی عبادت، کوئی خدمت جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا کہ ایک مومن کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کو خدا کا احسان مانے تو اچھی بات ہے اور یہی صحیح ہے. اس کا احسان تھا، اس کی نوازش تھی، اس کا کرم تھا. اس کو سعادت کہتے ہیں، نیک بختی. اور سعادت کے اس لفظ کی جب تحقیق کریں گے تو آپ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ سعادت کسی نیکی کے اجر و صلہ کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سعادت، نیک بختی، خوش بختی، خوش نصیبی خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ آج آپ ہم سب خدا کے نور کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور مظہر نور خدا کی ہدایت کی روشنی میں ہم رہتے ہیں، اور رحمتوں کی، مہربانیوں کی بارش برستی رہتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے لیے شکر گزاری کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس کی کوئی نظیر ملے دنیا میں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. اور خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کسی کو راہ مستقیم پر، یعنی صراط مستقیم پر ہدایت دے، اور اس انسان کو راہ راست پر چلائے. یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دیگر تمام نعمتیں اس کی تابع ہیں، اس کے اندر ہیں، اس کے نیچے ہیں، اس کی شاخوں کی حیثیت سے ہیں. دنیائی ظاہر میں بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ نعمت اتنی بڑی ہے، ایسی عظیم ہے کہ اس کے تحت دیگر تمام دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں آ جاتی ہیں، یعنی ہدایت اور امام شناسی. ہمارے لیے، آپ کے لیے امام شناسی بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، بہت ہی ضروری سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ ہم دوسروں سے ممتاز ہیں اسی امام شناسی کی وجہ سے. تو جس امام شناسی نے ہم کو سرفراز کیا ہے، اس امام شناسی کی ہماری نگاہوں میں قدر ہونی چاہیے. تو امام شناسی کا جو سبجیکٹ ہے اسماعیلیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. امام شناسی کے بارے میں ہمیں قرآن سے، حدیث سے، اور عقل و نقل سے بہت ساری دلائل کا ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم کو اطمینان ہو، سکون ہو، اور کسی سوال کا ہم سے جواب بن سکے. قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک بس امامت ہی کا سبجیکٹ ہے. اور اگر مانا جائے کہ قرآن کی آیات 6666 ہیں، تو ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آیت کے اندر سے اس دلیل کو اجاگر کیا جا سکتا ہے جو امام کے بارے میں ہے، جو امام کی امامت کے بارے میں ہے، جو امام میں خدا کے نور کے ہونے کے بارے میں ہے. کبھی ہم نے اپنے دوستوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت بتائیں جس کے بارے میں اس کا گمان ہو کہ اس میں امامت کا سبجیکٹ نہیں ہے، تو ہم ایسی ہر آیت سے امامت کے موضوع کو اجاگر کریں گے اور ثابت کریں گے کہ ہر آیت میں اسماعیلی مذہب کا ذکر ہے اور امامت کا ذکر ہے. تو کسی دوست نے ایک آیت کو ڈھونڈا، اور اس کے گمان کے مطابق اور اس کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ شاید اس آیت میں امام کا ذکر نہیں ہوگا. وہ آیت یہ تھی، من الجنۃ والناس، اس میں امامت کا ذکر کہاں ہے؟ یہ سوال تھا. ہم نے گزارش کی کہ ये दो किस्म के शैतानों के बारे में है, जिन्नी शैतान और इंसी शैतान। तो ये दोनों इमाम के दुश्मन होते हैं, तो फिर इनडायरेक्ट इमाम का तस्करा इसमें कैसे नहीं हो सकता है। ये जवाब था इस सवाल का कि जब इसमें इमाम की दुश्मनी की वजह से शैतानी जिन्नी और शैतानी इंसी की मजम्मत की गई है, तो किस तरह कोई कह सकता है कि इसमें इमाम की तारीफ नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली इमाम की तारीफ है। तो वो दोस्त था, वो मान गया। चुनांची कुरानी करीम ने न सिर्फ चंद आयान और जाहिरी आयात की बात है, बल्कि उसके बातिन में, उसकी तावील में और उसके हिडन मीनिंग में इमाम ही का जिक्र है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें इमाम का किस तरह से जिक्र है, मैं खुद सवाल करता हूँ और इसका जवाब देने के लिए कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। सूरह फातिहा के इस आगाज में खुदा ने जिस बिना पर अपनी जात की तारीफ की है, वो बिना, वो वजह परवरिश है। यानी खुदा ने अपनी जाती अकदस की तारीफ इसलिए की है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी आलमों का पालनहार है, पालने वाला है। तो हम जरा और से देखेंगे और तवज्जो देंगे कि अल्लाह ने किस लिए यहां अपनी जात की तारीफ की है, उसकी वजह क्या है। यही कि वो आलमों का परवरदिगार है। हम देखेंगे आलम कौन कौन से हैं। तो आलम क्या इसको कहेंगे, पत्थरों का आलम, घास पात दरख्तों का आलम, जानवरों का आलम वगैरह, या आसमान जमीन वगैरह? नहीं, इन आलमों पर खुदावंद की परवरिश का इतलाक नहीं होता है। हजार बरस पहले पहाड़ जैसा था, अब भी ऐसा है, और अगर खुदा उसको पालता तो पालने के ये मानी होते कि वो पत्थर कम से कम दरख्त बन चुका होता, और दरख्त से जानवर बन गया होता, और जानवर से इंसान हो चुका होता। तो जाहिर बात है कि यहाँ कुछ और मतलब है, और मतलब यह है कि आलम इंसान है और आलमीन सब इंसान है। तो खुदा इंसानों की परवरिश की बात करता है, खुसूसन इंसान के अंदर तीन चीजें हैं, जिस्म है, रूह है और अक्ल। तो यहां पर अक्ल परवरिश की बात है, अक्ल को पालने की बात हो रही है, और इसी वजह से खुदा अपनी जात की तारीफ फरमा रहा है। तो अक्ल की परवरिश के सिलसिले में खुदा ने अपना एक मजहर दुनिया में करार दिया है, अपना एक मजहर रखा है, यानी इमामी अली मकाम। और खुदा की तरफ से लोगों की रूहानी परवरिश के लिए है, अखली परवरिश के लिए है। और अगर इंसान के अंदर ये जरूरत परवरिश की, अकली परवरिश की, हिदायत की, इल्म की होने के बावजूद खुदा इसका कोई इंतजाम न फरमाता, तो कितनी अजीब बात होती, कितनी बखालत होती, कितनी कंजूसी होती। लेकिन नहीं, खुदा की जात ऐसी बखालत से पाक और बरतर है। लिहाजा मानना पड़ेगा जिस बात पर खुदा अपनी जात की तारीफ कर रहा है, उसके बारे में हम ये कबूल करेंगे कि उसने दुनिया में अखली परवरिश के लिए एक परवरदिगार को रखा है। परवरदिगार सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक लफ्ज है, पालने वाले को कहते हैं, जिस तरह आप हिंदी में पालनहार कहते हैं। तो खुदा ने एक पालनहार दुनिया में रखा है, और वो इमाम है जो हमारी अकलों की परवरिश करता है। और अकलों की परवरिश बहुत बड़ी बात है, जिस तरह मैंने گزارش کی کہ پتھروں کی پرورش نہیں ہو رہی ہے، درختوں کی پرورش بہت معمولی ہے، جانوروں کی پرورش قابل تعریف نہیں ہے، عام انسانوں کی جسمانی پرورش کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تو خدا جس بات پر اپنی ذات کی تعریف فرماتا ہے وہ عقلی اور علمی پرورش ہے۔ دیکھا آپ نے کہ قرآن میں خدا جس بنا پر اپنی ذات کی تعریف فرماتا ہے وہ عقلی اور علمی پرورش ہے۔ تو خدا نے اپنی طرف سے ایک پرورش کرنے والے کو رکھا ہے، کوئی اس کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں پر، لیکن خدا نے اس دنیا میں ایک پالنہار کو رکھا ہے، ایک پروردگار کو رکھا ہے، ایک رب کو رکھا ہے۔ رب بھی عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا اطلاق صرف خدا کے لیے نہیں ہوتا ہے، رب البیت، گھر کا مالک۔ اس طرح اس رب کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور خدا کے لیے بھی یہ رب کا لفظ آتا ہے۔ آپ جب عربی زبان میں جائیں گے، اس کی ڈیپ میں جائیں گے، ریسرچ کریں گے اور وسیع مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رب جو ہے وہ خدا کے لیے خاص نہیں ہے، خدا کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ خدا نے دنیا میں ایک رب کو رکھا ہے، اور یہ رب عقل کا رب ہے، اور عقلی پرورش بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسان کی ہستی کیا ہے، انسان کی ہستی کے کتنے اجزاء ہیں، کتنے پارٹس ہیں۔ کل بھی ایک محفل میں بات ہوئی تھی کہ انسان کی ہستی تین لیولز پر ہے، جسم ہے اور روح اور عقل، اور عقل جو ہے برتر ہے۔ آج دنیا میں جس کے پاس دنیوی عقل ہے وہ دنیوی طور پر سردار ہے، بادشاہ ہے، اور ہمارے امام کے پاس سے روحانی اور دینی عقل ہے، اس لیے وہ دینی بادشاہ ہے۔ لیکن عقل ہر اس چیز کو نہیں کہا جائے گا۔ آج جو لوگ دنیا میں ہوشیار ہوتے ہیں، ہوشمند ہوتے ہیں، یا سائنسدان ہوتے ہیں، یا موجود ہوتے ہیں، کسی چیز کا ایجاد کرتے ہیں، تو ہم ان کی تعریف دنیوی اعتبار سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عاقل ہیں، دور اندیش ہیں۔ لیکن عاقل کون ہے، دانا کون ہے، امام عالی مقام ہے۔ اور پھر مومنین کے پاس وہ عقل ہے ایمان کی وجہ سے، کہ وہ دور اندیش ہیں، بہت دور تک سوچتے ہیں، اور سب سے دور جو ہے وہ آخرت ہے، اور جو آخرت کے لیے سوچتا ہے وہ بڑا دور اندیش ہے، وہ بہت دور تک سوچتا ہے۔ اور جماعت کو، اسماعیلیوں کو ہم دانا کہہ سکتے ہیں؟ آپ پوچھیں، اتنی بڑی صفت جماعت کے لیے جس میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، تو جماعت کو عاقل اور دانا کیوں کہیں آپ، یا اور کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ لیکن میں ثبوت پیش کروں گا کہ جماعت کی دانائی اس بات میں ہے کہ انہوں نے امام کو لیا ہے۔ کیا یہ دانشمندی نہیں ہے کہ اگر ہم ذاتی طور پر دانا نہیں ہیں تو کسی دانا سے وابستہ ہو جائیں اور دانا کو لیں، اس کے دامن کو پکڑیں اور بالکل یقین حاصل کریں، کہیں کہ یہی دانا ہے؟ تو اگر ہمیں یہ پہچان ہے، یہ شناخت ہے، تو کیا یہ ایک بہت بڑی بنیادی دانائی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دانائی ہے، اور بڑی دانش ہے، بڑی عقل ہے۔ اور یہ کہنا کہ خدا نے اس دنیا کو نور ہدایت سے خالی نہیں رکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے اگلے وقتوں میں بہت سارے رہنما بھیجے ہوں، اور بعد کے کسی وقت میں اس نے سارے رہنماؤں کو اور پیغمبروں کو اور ان کے نمائندوں کو اٹھا لیا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ خداوند عالم اس دنیا کو اور نور ہدایت سے خالی رکھنا نہیں چاہتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام شناسی کا جو مضمون ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور سب سے زیادہ وسیع بھی ہے، یعنی بہت بڑا ہے اور بہت ہی وسیع ہے۔ اور اس کی مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ پورے قرآن میں یہی مضمون چلتا ہے، قرآن میں اور بھی مضامین چلتے ہیں، لیکن قرآن میں وہ بات ہونی چاہیے جو بنیادی قسم کی ہو، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بنیاد ہو سکتی ہے کہ خدا کے نور کے بارے میں، خدا کے مظہر کے بارے میں بات ہو، یقیناً یہ ہے۔ تو میں نے مثال کے طور پر قرآن کے شروع ہی سے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ رب العالمین کی حکمت میں امام کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں پرورش کی بات ہے، اور پرورش عقل سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، ہدایت سے ہوتی ہے، نور سے پرورش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری رضائیں امام میں موجود ہیں، اور خدا نے گویا کی فخر سے بجا طور پر اپنی تعریف کی اور اشارہ فرمایا کہ تعریف ہے اس ذات کی جو عالموں کا پالنہار ہے۔ تو اس میں اشارہ فرمایا کہ پرورش میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے، اور اس میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اس کو جسمانی پرورش سمجھے، درختوں کی پرورش، حیوانوں کی پرورش اور عام انسانوں کی پرورش، یہ بات نہیں ہے۔ جو روح الایمان ہے اس کی پرورش کی بات کریں، جو عقل ہے اس کی پرورش کی بات کریں، اور عقل کی تخلیق کے بارے میں پوچھیں کہ عقل کیا چیز ہے۔ عقل خدا کی بہترین مخلوق ہے کہ خدا نے اس کی پیدائش کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ اے عقل، تجھ سے اکرم اور افضل کوئی مخلوق میں نے پیدا نہیں کیا، اور اے عقل میں اس شخص میں تیری تکمیل کروں گا جو مجھے محبوب ہو، جو مجھے عزیز ہو، جو میرا پیارا ہو۔ تو اس معاملے میں آپ نے دیکھا کہ عقل کی تعریف خدا خود ہی قسم کھا کر کرتا ہے، تو پھر اس عقل کو دنیا میں بھی سہارا کس طرح چھوڑا جا سکتا تھا؟ بلکہ عقل کے لیے جس خوراک کی، جس علم کی، جس ہدایت کی، جس نور کی ضرورت تھی، اس کی تکمیل کے لیے خدا نے دنیا میں امام کو رکھا۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس علم کے ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے، کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اور اگر دلیل ہے تو امام کے مریدوں کے پاس ہے کہ ان کے پاس علم ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن امام کی اصل خاصیت کیا ہے، امام کی کیا خصوصیت ہے، اور دنیا میں خصوصیت کے بارے میں جاننا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کوئی جڑی بوٹی ہے، کوئی پھل ہے، کوئی چیز ہے، یا کوئی انسان ہے، یا کوئی جانور ہے، تو اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، اس کو خصوصیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ امام کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن سب سے خاص چیز امام کے پاس کیا ہے؟ آپ کہیں گے نور ہے، ٹھیک ہے، لیکن نور کی کیفیت کیا ہے؟ نور کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس نور کو ہم ایسا نور سمجھیں گے سورج کی طرح، چاند کی طرح، ستاروں کی طرح، یا اس بجلی کی طرح، یا لیمپ کی طرح، یا کسی اور روشنی کی طرح؟ نہیں، یہ تو بی جان سی روشنی ہے، اس میں گفتگو نہیں ہے،
इसमें हयात नहीं है, इसमें अकल नहीं है, इसमें दानिश नहीं है। इमाम का नूर ऐसा नहीं है। और जिन लोगों ने बैतुल ख्याल के सिलसिले में फर्स्ट लाइट देखी है तो शायद वो ये समझने लगेंगे कि बस इमाम का नूर यही है। नहीं, वो एक आजमाइश है। होने को तो एक रोशनी जरूर है लेकिन आखिरी नूर ये नहीं है। नूर की कोई कैफियत है, नूर की कोई सिफत है। नूर जिंदा है, नूर रूहानी है और नूर चोटी पर अकली है, नूर इल्मी है, नूर में हिकमत है, नूर में इल्म है, नूर में बेद है। नूर खुद एक जहान है, एक कायनात है। नूर के जुहूरात होते हैं यानी मैनिफेस्टेशंस, नूर की तजलियात होती हैं, नूर के जिलवे होते हैं और नूर में अजाइब व गराइब होते हैं। तो एक ही चीज को ले, इल्म को ले, अकल को ले। अब जब इल्म का सर चश्मा यानी फाउंटेन हेड इमाम है तो फिर कोई शख्स इमाम को छोड़कर किस तरह इल्म का दावा कर सकता है? इमाम से बाहर कोई इल्म नहीं है, इमाम से बाहर कोई नूर नहीं है। हालांकि दुनिया के बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके वहां भी रोशनी है लेकिन ये वो रोशनी है जो इम्तिहान के लिए हुआ करती है। चले देखें कुरान में इस रोशनी का क्या नाम है, मैं आपको बताऊंगा। आप किसी फुर्सत में सवाल करना कि आया रोशनी दूसरे लोग भी देख सकते हैं, और अगर दूसरे लोग भी देख सकते हैं तो हम में और उनमें क्या फर्क है, ये सवाल बाद में आप करना। लेकिन फिलवक्त मैं ये बताऊंगा कि इमाम का जो असल नूर है वो अकली है, इल्मी है। लिहाजा इल्म के बहुत बड़ी कदर है और इसके लिए ये दावा है और सही भी है कि इल्म इमाम से बाहर नहीं है। वैसे तो इमाम हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं लेकिन ये बहुत सारे काम इमाम के अपने नहीं हैं। आप इमाम से पूछते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, बीमारी है, तो इमाम चाहें तो आपको मशवरा दे सकते हैं, ये उसकी मर्जी है। लेकिन ये इमाम का अपना काम नहीं है, इमाम की खासियत नहीं है। इमाम की खासियत कुछ और थी लेकिन आपने तिजारत के बारे में पूछा, बीमारी के बारे में पूछा और घरेलू हालात को सुधारने के बारे में पूछा, तो मुझे कहने दीजिए और इजाजत हो कि ये ज्यादती है, आपने वो चीज तलब नहीं की जिसे तलब करनी थी, वो हिदायत, नूरानी हिदायत और इल्म। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, क्या हम सब इस्माइलियों के इमाम के पास जा जाकर इल्म के मसाइल, दुनिया के मसाइल, सेहत के बारे में, मुलाजमत के बारे में, कारोबार के बारे में ये सारी बातें पूछनी चाहिए? नहीं, नहीं। फिर क्या खालिस इल्म की और अकल की बातें पूछनी चाहिए? ये भी नहीं। फिर किस तरह हम इमाम से फायदा हासिल कर सकते हैं? वो कि इमाम के पास जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जाहिरी, एक रास्ता है बातिनी। आप किस रास्ते को पसंद करेंगे, किस रास्ते को पसंद फरमाएंगे? जाहिरी रास्ते को पसंद फरमाएंगे तो कभी मौका होगा और कभी नहीं होगा, और जो आपको मौका न मिले तो शायद दिल में थोड़ी सी रंजिश आपकी होगी और हो सकता है कि आप किसी अमलदार से कि उसने आपको मौका नहीं दिया नाराज भी हो जाएंगे। ये जाहिरी रास्ते की बात है। आप बातिनी रास्ते को इख्तियार करेंगे इमाम से राबिता के लिए, कनेक्शन के लिए, फाइज हासिल करने के लिए, नूर हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तो उसमें कोई अंदिशा नहीं होगा, कोई खलल नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा, और जिस कदर भी आप कोशिश करेंगे उसमें आपको कामयाबी होगी और इमाम की नवाजिश होगी। अच्छा, वो किस तरह मुमकिन है कि आप इमाम से बातिनी तौर से राबिता कायम रख सकते हैं, उसका भी इंतजाम इमाम ने फरमाया है। कुरान में अगर ये इरशाद हुआ है कि अगर तुमको इल्म की कोई बात पूछनी है तो अहले ज़िक्र से पूछा करो, लेकिन कुरान जो हुक्म देता है उसको भी जानना है, उसके तरीके को भी सोचना है, वो दरियाफ्त करना है। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। इमाम से राबिता रखने और उससे पूछने का रास्ता ये है, बातिनी रास्ता ये है कि आपको दो किस्म की इबादतें बताई गई हैं, एक जनरल इबादत, एक स्पेशल इबादत। और जनरल इबादत क्या है? वो इबादत जो यहां से जहां तक दुनिया में इस्माइली हैं उन सब के लिए दुआ मुकर्रर है। यहां ये सवाल भी करके आगे बढ़े ताकि कोई खास बात जो है अधूरी न रहे कि इस इबादत में और दूसरी इबादत में जो इस्लाम में शरीयत में है क्या फर्क है। फर्क है, इमाम के थ्रू से, इमाम की जबान से, इमाम के हुक्म से जो इबादत की जाती है वो कामयाब है, उसमें नूर है, उसमें कामयाबी है, उसमें रूहानियत है, उसमें निजात है। और इमाम इसलिए है कि उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक इबादत की जाए और उसने जो कुछ फरमाया है उसके मुताबिक हो। तो इमाम दो किस्म की इबादत आपको फरमाते हैं, एक जनरल इबादत है, एक स्पेशल इबादत है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि जनरल इबादत दुआ है तीन वक्त की, और स्पेशल इबादत जो है नूरानी इबादत है, जिसमें से आप जिसमें अलबत्ता अक्सर हजरात शामिल हैं, और बाज हो सकता है कि जो नई उम्र के हैं, छोटी उम्र के हैं, वो शामिल न हों, और इंशाल्लाह वो भी शामिल हो जाएंगे। तो इन दोनों इबादतों को करना है, एक को करके एक को नहीं छोड़ना है। जिनको इज़्ज़त मिला है, जिनको हुक्म मिला है, उनको ये दोनों इबादत जो हैं इनको संभालना है। तो स्पेशल इबादत से जनरल इबादत को मदद मिलेगी और जनरल इबादत से स्पेशल इबादत को बहुत ताकत मिलेगी, और स्पेशल इबादत से रूहानियत का दरवाजा खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा, और आपकी जात के अंदर जो आपकी रूह है वो बहुत सी बातों में ऑटोमेटिक है। दुनिया की साइंस ने कितनी कामयाब चीजें बनाई, उससे कहीं बढ़कर इंसान की रूह है कि इसके अंदर पूछने का निजाम है और जवाब पाने का निजाम है। तो जब आप उस मंजिल को पहुंच जाएंगे जो रूहानियत की मंजिल है, जो कामयाबी की मंजिल है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी रूह सवालात करेगी या सवालात नहीं करेगी, खुद ब खुद इल्म आपके सामने आएगा, हिदायत आपके सामने आएगी, असल रोशनी जो अकली रोशनी है वो सामने आएगी। आप उस रोशनी से आगे बढ़ेंगे जो बिल्कुल यानी मामूली नौयत की रोशनी है, वो यकीनन ऐसी रोशनी है, बीजान सी रोशनी है। इस बीजान सी रोशनी को आप क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस बीजान सी रोशनी को हिंदू भी देखते हैं और यहूद नसारा भी देखते हैं और दूसरे मजाहिब के लोग भी देखते हैं। बड़ी आजमाइश है, बड़ा इम्तिहान है। इस बीजान सी रोशनी को वो लोग खुदा मानते हैं, नूर खुदा तसव्वुर करते हैं, तो फिर वो गुमराह हो जाते हैं। गुमराही के बारे में आप ये नहीं सोचे कि जाहिर में गुमराही है, सबसे बड़ी गुमराही बातिन में दाखिल हो जाने के बाद शुरू हो जाती है। आसमानी रूहानियत, आसमानी अव्वल पर तैनात है, गार्ड्स हैं, उनके हाथों में शोले हैं, रोशनियां हैं, उन रोशनियों से मारते हैं शयातीन को, ताकि वो आसमानी रूहानियत की तरफ नहीं जा सके, वो वहां से लौट जाते हैं। ये रोशनी है, लेकिन इस रोशनी की दो बातें हैं जो इमाम के मुरीद है उनके लिए ये जो बीजान सी रोशनी है वो भी मुफीद है, वो भी एक खुशखबरी है, वो भी एक खुशी की अलामत है, वो भी एक बुशारत है, वो भी एक गाइड है गाइडेंस है। लेकिन जो दूसरे लोग इसको देखकर वापस हो जाते हैं और गुमराही का सबब होता है, उनके लिए ये रोशनी आग का काम देती है, तो बड़ा फर्क है। और इस रोशनी की ये बात करने के बाद मैंने कहा कि आप इस पर ठहरना नहीं, कभी ठहरना नहीं, इस पर किनात नहीं करना, आप आगे बढ़ना, आगे बढ़ना और बहुत आगे जाना और इल्म के मकाम को छूना और दीदार के लिए आगे बढ़ना, फना के लिए आगे बढ़ना। और इमाम आली मकाम ने जिस तरह इरशाद फरमाया था कि कुछ बुजुर्गों के बारे में कि वो अपनी रूह के आशिक थे, तो आप अपनी रूह को देखने के लिए आगे बढ़ना। जब तक मोमिन अपने नसबुल आइन को नहीं समझता है, जब तक मोमिन अपनी आखिरी मंजिल को नहीं समझता है, तो उसका मंसूबा जो होता है वो छोटा होता है, छोटा। और हम अपने मंसूबे को बड़ा मंसूबा, बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह बनाएं? इलूम के जरिए से हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बड़ा बना सकते हैं। इलूम न हो तो हमारी निगाह जो है दो कदम भी आगे नहीं जा सकेगी। और हम मुमकिन को नामुमकिन करार देंगे अपने अंदर इलम के न होने की वजह से। लेकिन हमें इस माली होने के बावजूद क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा सोचना चाहिए? हमें बहुत आगे जाना है, हमें दुनिया में भेजा गया है बड़े कामों के लिए, बड़े कारनामों के लिए। हम खुदावंद से हिम्मत को और तौफीक को तलब करें और आली हिम्मती से काम करें, उलुल अज़्मी से काम करें और अपने मकसद आली को समझे कि हमारा क्या मकसद है। यहाँ पर मैं एक हदीस कुदसी को कोट करता हूँ, या बनी आदम तो अनी अजअलुका मिस्ली हयन ला तमूत, ए औलाद आदम, ये खुदा फरमाता है, नफ्स कुल्ली फरमाता है, ए इब्न आदम तू मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझको अपना जैसा बनाऊंगा। सुन लिया आपने खुदावंद के इस फरमान को कि वो फरमाता है औलाद आदम से, यानी इमाम के रूहानी फरजंदों से, क्योंकि इमाम ही जमाने का आदम है और इमाम के जो मुरीद हैं उसके रूहानी फरजंद हैं, तो इन्हीं से फरमाया जाता है, दूसरों से नहीं। और इन्हीं से फरमाया जाता है कि तुम सही मानों में मेरी फरमान बरदारी करो ताकि मैं तुमको अपना जैसा बनाऊंगा। इससे बढ़कर और क्या खुशखबरी हो सकती है, आप बताएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे दो खुदा नहीं होंगे, बहुत से खुदा नहीं होंगे? कि एक वो खुदा जो हमेशा से है और एक ये खुदा जो यहां से बनाया गया? नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं। एक से ज्यादा खुदा होने का तस्वीर भी नहीं किया जा सकता। तो फिर इसमें क्या राज है कि वो खुदा आपको खुदा बनाता है, अपना जैसा बनाता है, तो क्या इससे डुअलिटी पैदा नहीं होगी, दुई नहीं होगी? नहीं, दुई नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि खुदा एक यूनिटी है, खुदा एक वननेस है, खुदा एक वहदत है। और उसकी वहदत में आपकी वहदत ऑलरेडी मौजूद है। आप जब दुनिया में आए थे, इस बात को तवज्जो से सुनना होगा, आप जब दुनिया में आए थे तो कट ऑफ होकर नहीं आए थे, वो अल्लाह नहीं, आप इस तरह से आए थे कि अपनी वादत को उस सोर्स से और उस चश्मे से अलाहिदा किए बगैर, जुदा किए बगैर दुनिया में आए थे और आपकी असलियत वहां अब भी मौजूद है। और दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सच चश्मे से जुदा नहीं हुई है। सूरज को देखिए और उसकी किरणों को देखें, उसके रेस को देखें, सूरज को देखें और मिरर में जो सूरज का आग से रिफ्लेक्शन है उसको देखें, क्या इसमें धुई है? सूरज को देखें और चांद को देखें, सितारों को देखें, कि अगर माना जाए कि सूरज ही की रोशनी चांद पर पड़ती है और सितारों पर भी वही रोशनी है, तो क्या इन रोशनियों में जुदाई है, कट ऑफ है? अब बताएं कि चांद रोशन नजर आता है तो इस रोशनी और सूरज की रोशनी के दरमियान कहाँ कट ऑफ है? मैं तो ये कहता हूं कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जहां जहां रोशनी है उसका लिंक है सूरज के साथ, सरचश्मे के साथ। बिल्कुल इसी तरह अब जो हम हैं, हम सब एक लिंक है उस सरचश्मे के साथ। जिस तरह के स्टेशन से, टीवी स्टेशन से तमाम शहर के घरों में वेव आती है और हर सेट पर कोई शक्ल नमूदार होती है, कोई आवाज दिखाई सुनाई देती है, तो क्या इन तमाम सेटों का उस स्टेशन से राबिता नहीं है? क्यों नहीं है? राबिता है। अगर राबिता है तो दुनिया में जितने इंसान हैं, उन तमाम इंसानों का भी रूहानी तौर पर खुदा के नूर से राबिता है, खुदा के नूर से राबिता है, यकीनन राबिता है। और हम दुनिया में आए हैं किस तरह? नूर की एक रस्सी की तरह आए हैं। इस बात को आप याद रखें, इस मिसाल को जेन नशीन कर लें, कि हम नूर की एक रस्सी की तरह आए हैं। नूर की रस्सी का बलाई सिरा यानी ऊपर का सिरा खुदा के हाथ में है, यानी खुदा के नूर से वाबस्ता है। और इस नूर की रस्सी का निचला सिरा आप में यहाँ है। आपका जिस्म कुछ मैकेनिज्म की तरह है। रूह जो खुदा से एक रस्सी की तरह आई है या सूरज की किरणों की तरह आई है, वो जब यहाँ इस शख्सियत के साथ टच करती है तो यहाँ से एक एहसास पैदा होता है, एक शूर पैदा होता है या एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है। जिस तरह कि मिरर को आप सामने रखें, बहुत सारे आइनों को रखें, सूरज की तरफ फेर के रखें, तो सूरज का अक्स आईने में नजर आता है। तो इसमें राबिता होता है, कनेक्शन होता है, लिंक होता है, और इस लिंक की वजह से यहाँ पर सूरज नजर आता है, हालांकि आईने में सूरज नहीं है, आसमान में। इसी तरह जब हम इस रूह को लपेटेंगे, समेटेंगे, तो अपने आप को खुदा के करीब पाएंगे। मंसूर हल्लाज एक सूफी था और उसने अनल हक कहा। अनल हक के दो मानी है, एक मानी में उसने अपने आप को खुदा करार दिया। क्यों? कि उसकी रूह की रस्सी बहुत शॉर्ट हो गई, तो खुदा ने उस रस्सी को समेटा और लपेटा। मिन रस्सी इसलिए कहा कि कुरान में एक बहुत बड़ी मिसाल खुदा की रस्सी है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये रस्सी इमाम है, लेकिन इमाम की इस मिसाल से हम रूह को समझाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। इमाम की इस मिसाल से हम रूह को समझाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मोमिन पोटेंशियली इमाम की एक कॉपी है, इसमें एक गुंजाइश है। तभी तो अभी एक हदीस कुदसी के हवाले से कहा गया था कि खुदा कहता है कि ए मोमिन, सही मानों में इताअत करो, फरमान बरदारी करो, ताकि मैं तुमको अपना जैसा बनाऊंगा। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि मोमिन अगर अपने आप को पहचाने और सही ताबेदारी करे तो ये इमाम की एक कॉपी हो सकता है। जब इमाम की एक कॉपी हो सकता है तो इसकी इम्कानियत इस तरह से हो सकती है कि इसका लिंक है, और जिसके बारे में मैंने अभी अभी टीवी स्टेशन की मिसाल दी थी कि आपके घरों में जो टीवी सेट है उसमें स्टेशन से लहर आती है, वेव आती है, कोई शक्ल आती है, कोई आवाज आती है, कोई फिल्म आती है, और हालांकि आपको नजर आती है घर में, और वो है दरअसल स्टेशन पर, या यूं कहा जाए कि स्टेशन से लेकर आपके हिस्से तक एक रस्सी है, और रस्सी की मिसाल लेकिन लिंक है, आप ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा आपका सेट, लेकिन स्टेशन पर वो मौजूद हो सकता है, उसको आप घर बैठे बैठे ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो जब मोमिन दुनिया से गुजर जाएगा, अपने आप को लग रहा था कि रूह दुनिया में आई है, कट ऑफ होकर नहीं आई है, उसका लिंक अपनी जगह पर कायम है और उसका वननेस है खुदा की वादत के साथ, और ये बड़ी गुंजाइश है। इसलिए खुदा ने फरमाया कि तुम मेरी इताअत करो ताकि मैं तुझको अपना जैसा बनाऊंगा। और अगर ये मोमिन खुदा जैसा हो सकता है तो हर लिहाज से, हर बात से, हर इतिबार से हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो खुदा अलग हो, ये खुदा अलग हो और दो खुदा हों, और ये उसके उसे कमजोर हो और नाया हो, अभी अभी पैदा हुआ हो, इस तरह से नहीं है। ये एक राज है कि खुदावंद चाहता है, इसलिए फरमाता है कि तुम मेरी इताअत करो ताकि मैं वो राज तुम पर आशिकार करूंगा कि किस तरह तू और मैं एक है। मैं आशिकार करूंगा, मैं तुमको समझाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा किस तरह तेरी और मेरी वननेस है और हमेशा से है और कदीम है। मैं तुमको इलुम के जरिए से, मारिफत के जरिए से समझाऊंगा। इसकी शर्त ये है कि तुम जैसा कि मैं चाहता हूं इताअत करो, ये खुदा का फरमान है। तो अजदान ये है इलुम की एक मिसाल। इलुम मोमिन के लिए बहुत ही जरूरी है, इस मजहब में इलुम की बहुत जरूरत है। क्यों? फायदा यहां पर है, शिनाख्त का फायदा यहां पर है। कोई और शख्स इलुम हासिल करे या ना करे, जब तक वो इमाम को नहीं पहचानता है तो उसके उस इलुम से क्या फायदा होगा। लेकिन यहां पर बिल्कुल इम्कानियत है, फायदा है, और इमाम चाहता है कि उसका मोमिन जो है आप उससे करीब हो जाए, फरमानबरदारी करें, और ये बहुत बड़ी बात है।